ये आकाशवाणी है। अब आप आकर्षिता सिंह से समाचार सुनिए। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 21,772 करोड़ रुपए से अधिक के 5 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में परिषद ने नौसेना के लिए 31 नए वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट की खरीद को स्वीकृति दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये हमलावर पोत तट के निकट कम तीव्रता की समुद्री कार्रवाई, निगरानी, गश्त, खोज और बचाव कार्यों के लिए डिजाइन किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि परिषद ने 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट की खरीद को भी मंजूरी दी है। ये पोत तटीय रक्षा के लिए विमान वाहक, विध्वंसक और फ्रिगेट तथा पनडुब्बियों की सुरक्षा सहित कई तरह के कार्य कर सकेंगे। बैठक में भारतीय तट रक्षा के लिए 6 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों की खरीद को भी मंजूरी दी गई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के बीच संबंध बढ़ाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना पहली शर्त है। उन्होंने कहा कि दोनों देश आने वाले दिनों में सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव कम करने और गतिविधियों के प्रभावी प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री ने चीन के साथ भारत के संबंधों में हाल की प्रगति के बारे में आज लोकसभा में वक्तव्य देते हुए कहा कि लगातार राजनयिक संबंधों को प्रतिबिंबित करने वाली हाल की घटनाओं से भारत और चीन के संबंधों में कुछ सुधार हुआ है। राज्यसभा ने कल ऑयल फील्ड विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 को स्वीकृति दे दी। ये विधेयक खनिज तेलों की परिभाषा में विस्तार के बारे में है, जिसमें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हाइड्रोकार्बन, कोलबैड, मीथेन और शेल गैस शामिल हैं। विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि खनिज तेलों में कोयला, लिग्नाइट या हीलियम शामिल नहीं होंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में पिछले 3 वर्षों से तेल की कीमतों में गिरावट आई है। संसद के दोनों सदनों में 5 दिन से जारी गतिरोध समाप्त होने के बाद कार्यवाही कल सामान्य रूप से चली। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत चीन के बीच संबंध बढ़ाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना पहली शर्त है। उन्होंने कहा कि दोनों देश आने वाले दिनों में सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव कम करने और गतिविधियों के प्रभावी प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री ने चीन के साथ भारत के संबंधों में हाल की प्रगति के बारे में कल लोकसभा में वक्तव्य देते हुए कहा कि लगातार राजनयिक संबंधों को प्रतिबिंबित करने वाली हाल की घटनाओं से भारत और चीन के संबंधों में कुछ सुधार हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 दिन के दौरे पर कल शाम अपने गृह राज्य उड़ीसा पहुंची। भुवनेश्वर पहुंचने पर राज्यपाल रघुवर दास, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज पुरी में ब्लू फ्लैग बीच पर आयोजित भारतीय नौसेना दिवस समारोह और कई अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। भाजपा में नवनिर्वाचित महायुति गठबंधन की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले कल मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई। मुख्यमंत्री के नाम के बारे में स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई है। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के आजाद मैदान में होगा। अगरतला में बांग्लादेश सहायक उच्चायोग AHC कार्यालय में सुरक्षा उल्लंघन के 1 दिन बाद पड़ोसी देश के मिशन ने सभी वीजा और दूतावास संबंधी सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार बांग्लादेश सहायक उच्चायोग के मिशन प्रमुख और प्रथम सचिव ने एक नोटिस में कहा कि सुरक्षा स्थिति को देखते हुए अगरतला स्थित बांग्लादेश सहायक उच्चायोग से सभी वीजा और काउंसलर सेवाएं अगली सूचना तक निलंबित रहेंगी। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। ओमान की राजधानी मस्कट में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मैच में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हरा दिया। नई दिल्ली में 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत ने पहले मैच में हांगकांग चीन को 31-28 से हरा दिया। दीक्षा कुमारी की अगुवाई में भारतीय टीम को ग्रुप बी में जापान, ईरान और हांगकांग जैसी मजबूत टीमों के साथ रखा गया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।